تفسير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ، پس تحقیق اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کا، مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا ہے. اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور اس چیز پر جو فیصلے کے دن دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن جو ہے ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی. یوم الفرقانی، یوم التقل جمعان، یوم التقل جمعانی، جس دن لڑی تھی، بھیڑ گئی تھی دونوں فوجیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب آپ دیکھیے کہ سورت الانفال کے بالکل آغاز میں جب لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا، آغاز اس سورت کا بڑا عجیب ہے. یسألونک عن الانفال، پہلی آیت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ، یہ مجاہد لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا. اور بجائے اس کے کہ مال پر توجہ دی جائے، تو مال غنیمت کی تقسیم کی بجائے شروع میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے. اس کے معنی کیا تھے؟ کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کو حاصل ہے. اور پھر وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو کچھ مشورے دیے گئے تھے، جن میں سے فتقوا اللہ پہلی بات تھی کہ ڈرو اللہ سے، نمبر دو واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے جو معاملات ہیں، جو ذاتی تعلقات ہیں، اس کی اصلاح کرو، نمبر تین واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اور اگر ہو تو مومن. پھر اسی طرح جیسے یہ آیت نمبر ایک کے بعد آیت نمبر دو تین چار میں بھی اللہ رب العزت نے مختلف جو تھی مومنانہ اوصاف کی طرف توجہ دلائی، کہ مال پر نظر اس وقت جاتی ہے یا مال کے بارے میں فکر اس وقت ہوتی ہے جب جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے توجہ جو ہے تھوڑی ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو اس وقت یہ کہہ دیا کہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا. اب یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کو حاصل ہے. اور اب وہ فیصلہ کر دیا گیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ کہ لڑائی کے بعد تمام سپاہی، تمام مجاہدین، تمام طرح کا مال غنیمت لا کر امیر یا امام کے سامنے رکھیں، کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں، اور پھر وہ اس مال میں سے پانچواں حصہ جو ہے ان چیزوں کے لیے وہ نکال لے، جو یہاں پہ آیت میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں. نمبر ایک کیا کہا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. نمبر دو رشتہ داروں کے لیے، نمبر تین یتیموں کے لیے، نمبر چار مسکینوں کے لیے، اور نمبر پانچ وابن السبیل، مسافروں کے لیے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو کل مال غنیمت ہے اس کا پانچواں حصہ، خمس، پانچواں حصہ جو ہے وہ نکالنا ہے. اور اس کو نکالنے کے بعد یہ جو یہاں پہ جو چیزیں گنوائی جا رہی ہیں، ان پر جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم जो है हमेशा लड़ाई के बाद ये ऐलान किया करते थे कि ये गनाइम तुम्हारे ही लिए हैं, मेरी अपनी जात का इनमें कोई हिस्सा नहीं है बजुज खुम्स के, और वो खुम्स भी तुम्हारे ही इज्तमाई मसाले पर सर्व कर दिया जाता है, लिहाजा एक एक सुई और एक एक धागा तक ला कर रख दो, कोई छोटी या बड़ी चीज छुपा कर ना रखो कि ऐसा करना शर्मनाक है और इसका नतीजा दोजख है। तो अब आप देख लें कि यहां पर सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि वालमू, खूब जान लो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अन्नमा गनिमतुम, कि जो कुछ भी तुमने हासिल किया है, मिन शैन, शैन से मुराद है कि जो कुछ भी, वो थोड़ा है, वो ज्यादा है, वो जो कुछ भी है। तो पहली चीज क्या है, फअन्नहु लिल्लाही, बस बेशक वो तहकीक अल्लाह के लिए है, खुमोसहु उसका पांचवा हिस्सा, वलिर रसूली और रसूल के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए होने का क्या मतलब है, इससे मुराद ये है कि खुम्स का, माले गनीमत का जो पांचवा हिस्सा है, उसका एक जुज अल्लाह ताला के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए, अलाए कलमतुल्लाह और अकामते दीन के काम में सर्व किया जाए। ये है इसके मानी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, और बाकी तो क्लियर ही है कि फिर इसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार और यतीम और मिस्कीन और मुसाफिर। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो उनके रिश्तेदार मुराद थे, क्योंकि आप अपना सारा वक्त दीन के काम में लगाते थे और अपनी मुआश के लिए कोई काम करना आपके लिए मुमकिन नहीं था, तो इसलिए आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, जिनकी कफालत आपके जिम्मे थी, आप जो थे उनके लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं कर सकते थे, इसलिए खुम्स में आपके रिश्तेदारों का हिस्सा रख दिया गया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हमें खुल्फाए राशिदीन के अमल से यही बात जो है वो पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी ये जो हिस्सा था, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों पर ही जो है वो खर्च किया जाता रहा। ऐसा नहीं है कि खुल्फाए राशिदीन ने जो है वो अपने रिश्तेदारों पर खर्च किया हो, बल्कि क्या कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार थे उन्हीं को जो है वो दिया जाता रहा। कि आपके खानदाने नबूवत के जो गरीब लोग थे उन पर जो है ये तकसीम किया जाता रहेगा। ये थी उस वक्त के जमाने की खुल्फाए राशिदीन की राय। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर ये बात बहुत अहम है कि असल में ये अल्लाह का है, क्योंकि अल्लाह हर चीज का मालिक है, हर चीज पर अल्लाह का हुक्म चलता है, तो माले गनीमत के बाकी चार हिस्से जो है वो कहाँ जाएंगे? ये तो पांचवें के बारे में तफसील बताई जा रही है ना, तो बाकी चार हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएंगे जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया होगा। इनमें से जो पैदल चलने वाले थे उनको एक हिस्सा मिलेगा, और सवार जो है उसको तीन हिस्से मिलेंगे। ऐसा क्यों है कि पैदल चलने वाले को एक हिस्सा मिलेगा और जो सवार है उसको जो है वो तीन हिस्से जो है वो दिए जाएंगे? इसकी वजह यह है कि उसकी सवारी की वजह से, यानी सवारी की वजह से, क्योंकि उसकी जो सवारी है उसका इंतजाम और उसका खर्च, तो इसलिए पयादा पैदल चलने वाले को एक और सवार को तीन गुना हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। और आपको खुम्स का तो पता ही है ना कि अरबी जबान में खुम्स पांचवें हिस्से को कहते हैं, तो जो भी माले गनीमत मिलेगा, क्योंकि गनम का लफ्ज है ना यहाँ पर, और गैन नून मीम गनम, ये बकरियों के रेवड़ को भी कहते हैं। अलगनम, बकरियों का कहीं से हाथ लग जाना या उनको हासिल करना, फिर ये लफ्ज जो है हर उस माल पर बोला जाने लगा जो दुश्मन से और गैर दुश्मन से हासिल हो, और ऐसा माल जो कि दुश्मन पर फतह पाने के बाद जो है वो मिल जाए। और आपको ये बात भी पता है कि यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले जो लोग थे, जो दूसरी उम्मतें थीं, उनके लिए माले गनीमत जो था वो हलाल नहीं था। उनके लिए क्या करना पड़ता था कि पहली उम्मतों में ये तरीका था कि जंग खत्म होने के बाद काफिरों से हासिल किया हुआ सारा माल एक जगह ढेर कर दिया जाता, आसमान से आग आती और उसे जलाकर भस्म कर देती, लेकिन इसे उम्मत मुस्लिमा के लिए हलाल कर दिया गया। तो यहाँ पे इसी चीज की तरफ जो है वो इशारा है। अब आप देख लें कि सूरत अल अनफाल जो है, जिसमें गजवाए बदर पर तबसरा किया गया, और यहाँ पर इस वक्त आप 41 नंबर आयत पर हैं, और 40 आयात तक जंग पर, जंग की जो दीगर बातें थी उन पर तबसरा किया गया, और सबसे शुरू में यही कह दिया गया कि बस ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, ताकि सहाबा जो हैं और सारे लोग जो हैं वो सरे अतात खम कर दें कि माल के बारे में जो भी अल्लाह का हुक्म होगा, जो भी अल्लाह के रसूल की तरफ से बात सामने आएगी उसी पर जो है वो अमल किया जाएगा। तो ये है असल चीज कि सरे अतात खम करना है, अतात करनी है। और अब आप देखें कि ये जो माल की तकसीम है ये कौन करेंगे, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाही, अगर हो तुम अल्लाह पर ईमान लाने वाले, इन कुंतुम आमनतुम बिल्ला, इससे ये बात पता चलती है कि ये ईमान का तकाजा है, क्योंकि जब ईमान होता है तो ही अमल करना जो है वो आसान हो जाता है। ईमान कहते किसे हैं? ईमान जो है वो यकीन का उस हद तक पहुंच जाना जहां इंसान का अमल बदलना शुरू हो जाए, क्योंकि ईमान जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसलों के आगे सरे अतात खम कर देना है, अपने आप को झुका देना है। जैसे आप देखें कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि सहाबा के दरमियान दो तीन तरह के ग्रोह पैदा हो गए थे, जो ये कह रहे थे कि जो माल है इसमें मेरा हिस्सा है या ये मेरा है, क्योंकि हमने ज्यादा अहम खिदमत जो है वो सर अंजाम दी है। लेकिन अब यहाँ पर जो है जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है वो क्या है कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाने वाले हो तो ये माल की तकसीम के बारे में जो तरीका बता दिया गया है तो इस पर तुम्हें जो है वो अमल करना है, क्योंकि माल अल्लाह का है, अल्लाह का हक इस पर सबसे ज्यादा है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक इस पर सबसे ज्यादा है। इस सिलसिले में आप ये बात याद रखें कि असल जो अहम बात है वो क्या है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो हक है वो क्या है कि फिर अल्लाह के दीन को जो है वो जमीन पर गालिब किया जाए और पैसे उस पर जो है वो लगाए जाएं, और ये है खुम्स की तफसील। और अब आप देखें कि यहां पर ये कह करके इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाही कि अगर तुम ईमान लाने वाले हो अल्लाह पर और उस चीज पर ईमान लाने वाले हो, किस चीज पर, वमा अनजलना अला अब्दिना, वो चीज जो कि हमने नाजिल की थी अपने बंदे पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे पर क्या नाजिल किया था। यहां पर इससे मुराद फतह है, अब्दिना से मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हमने अपने बंदे यानी अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल किया था, क्या नाजिल किया था, फतह नाजिल की थी। और वो दिन कौन सा था, यौमुल फुरकान, वो यौमुल फुरकान था। अब आप देखें कि गजवाए बदर जो है ये 2 हिजरी 17 रमजान मुबारक को हुई, इस दिन को यौमुल फुरकान कहा गया है क्योंकि ये काफिरों और मुसलमानों के दरमियान पहली जंग थी, और मुसलमानों को फतह और गलबा देकर वाजे कर दिया गया कि इस्लाम हक है और कुफ्र और शिर्क जो है ये बातिल है। और फुरकान का मतलब क्या होता है, फर्क से है ना, फर्क, इसके मानी क्या है कि अलग कर देना, फर्क कर देना, फर्क किस चीज का, हक और बातिल का फर्क। तो यौमल फुरकान, गज़वे बदर का दूसरा नाम क्या है, यौमल फुरकान, फैसले का दिन। यौमल तकल जमान, यौमा वो दिन, अल तका असल में लकिया, लाम काफ वो लाम काफ या, इसका मतलब है, लकिया का मतलब होता है मिलना, मुलाकात करना, और असल में ये था इल तका, इल तका तान, कि दो जमातें मिली थी, अल जमान ये भी दो जमातों के लिए है, तो कौन सी दो जमातें थी? एक थी मुसलमानों की जमात और दूसरी थी काफिरों की जमात। मुसलमान मदीना से निकले थे और काफिर जो थे वो मक्का से निकले थे, तो दोनों फौजों की मुठभेड़ के दिन हमने अपने बंदे पर जो कुछ नाजिल किया था, और अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर क्या नाजिल किया था? फतह नाजिल की थी। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब यहां पर ये बात बताई जा रही है कि फतह अल्लाह ने नाजिल की थी, मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी खास करम से, अपनी खास ताईद से मुसलमानों को फतह दी थी, तो इसलिए ये माल है, इस पर जो भी फैसला है वो किसका नाफिज होगा? वो अल्लाह का फैसला जो है वो नाफिज होगा। और फिर इसके बाद जो है फरमाया, इज अंतुम बिल उद्वति दुनिया वहुम बिल उद्वति कुस्वा वर्रकबु अस्फला मिनकुम। अब आप देखें कि मैंने आपको पहले बताया था कि इज का लफ्ज जो है असल में उस कुरू का मुखफ्फफ है। उस कुरू के मानी होते हैं कि याद करो, और याद करो जब, इज जब अंतुम ए मुसलमानों तुम थे बिल उद्वती, और उद्वती जो है इसका रूट है आयन दाल वो। ये लफ्ज जो है ये दुश्मन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अदू दुश्मन को भी कहते हैं, अदावत दुश्मनी को कहते हैं, दुश्मन दुश्मनी। और उद्वा जो है इसके मानी होते हैं कि जैसे वादी का किनारा, बुलंद जगह वादी का किनारा, उद्वा दूर का किनारा जो बुलंदी पर हो। तो बिल उद्वती के मानी है कि तुम एक किनारे पर थे, एक तरफ थे, एक साइड पर थे। दुनिया, दुनिया जो है आपको पता ही है कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में करीब है, और यहाँ पे दुनिया के मानी जो है वो किसके हैं? दुनिया के मानी करीब के हैं, और तुम उस वक्त जो है वो करीब के जो है वो किनारे पर थे। वहुम, और वो लोग जो थे जो काफिर थे, बिल उद्वा तिल कुस्वा, उद्वा वो किनारे पर थे, अल कुस्वा दूर के। कुस्वा जो है काफ स्वाद वो, और अक्फा ये भी किनारे के लिए इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज भी किनारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है अक्सा। तो यहां पर जो है इस्तेमाल किया गया है खास तौर पर कुस्वा का लफ्ज, और इसके मानी है दूर, और वो दूसरी जानिब दूर जो थे वो पड़ाव डाले हुए थे, दूसरी जानिब वो रुके हुए थे। अब आप देखें कि दरअसल यहां पर जो है ये मंजर कशी की जा रही है कि उस वक्त मुसलमान कहाँ थे और काफिर कहाँ थे। गज़वा बदर के मुआहदे जंग का नक्शा यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुसलमान उद्वा दुनिया के पास थे और कुफार उद्वा कुस्वा के पास थे। मुसलमानों का मकाम उस मैदान के उस किनारे पर था जो मदीना से करीब था। बदर का जो मैदान है मदीना से जो करीब का किनारा था उस पर मुसलमान थे, और कुफार मैदान के दूसरे किनारे पर थे जो मदीना से बई था, दूर था। वर्रकबू अस्फला मिनकुम, वर्रकबू और रकब जो है इसके मानी है काफला, क्योंकि राकिब जो है ना, राकिब का लफ्ज भी आपने जो है वो सुना होगा। रकीबा का मतलब होता है सवार होना, और अर्रकबू जो है ये सवार काफला कारवां के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राकिब उनकी जमा है अर्रकबू, और जैसे राकिबुन रुकूब ये भी जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्रकबू, और वो जो काफला था असफला मिनकुम वो तुमसे नीचे साहिल की तरफ था। असफला जो है आपको पता है ये नीचे के लिए, जैसे असफल साफिलीन, सब नीचों से नीच के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कौन सा काफला है जो कि नीचे की तरफ था? यहाँ इससे मुराद है अबू सुफियान का तिजारती काफला, जो कि उस वक्त समंदर के किनारे किनारे चल रहा था। और ये तिजारती काफला जो है इसी की वजह से असल में जो है ये गजवा जो है वो हुआ था कि अबू जहल को और मक्का वालों को ये खतरा पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जो है हमारे तिजारती काफले पर जो है वो हमला कर लें। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप जो थे जब निकले थे, तो आपका भी आप और आपके लश्कर का ये इरादा नहीं था कि जंग करनी है, मुसलमान तिजारती काफले का रास्ता रोकने के लिए निकले थे। और जो कुफार थे वो अपने तिजारती काफले को बचाने के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि दोनों लश्कर मैदान जंग में आमने सामने जो थे वो आ गए। तो अगर बकायदा मनसूबाबंदी के तहत उस वक्त जंग की प्लानिंग की होती तो फिर कोई भी जो फरीक था वो जंग ना करता, बल्कि वो उससे बचना ही चाहता, क्योंकि अहले मक्का भी बगैर तैयारी के जंग नहीं करना चाहते थे। उन पर मुसलमानों का बड़ा रोब और दबदबा था, मदीना में मुसलमान आ चुके थे, मुसलमान भी जो है वो उनके दरमियान ही इख्तलाफ पैदा हो जाता कि हमारी तादाद थोड़ी है, असलहा नहीं है, तो कैसे जंग करें। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत असल में गज़वे बदर के दिन जो मोजज़ात हुए और जो खास वाकयात, जो गैबी मदद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई, उसका यहाँ पर जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि आप दोबारा फिर इस आयत को सुने कि इज अंतुम बिल उदवाति दुनिया, के मुसलमानों तुम उस वक्त जो है वो वादी के इस जानिब थे, एक किनारे पर थे जो करीबी मदीना के करीब था जो किनारा, वहुम और वो जो काफिर थे बिल उदवातिल कुसवा वो दूसरी जानिब थे, वो मदीना से दूर के किनारे पर थे, वर्रकबू और वो जो अबू सुफियान का काफला था, असफला मिनकुम वो तुमसे नीचे था, तो वो जो था वो साइड पर होकर जो है वो गुजर रहा था और अपने आप को बचा कर जाना चाह रहा था। और यहाँ पर जो है वो यही बात बताई जा रही है कि वलऊ तवा तुम लख तलफ तुम फिल्मी आद, के अगर जो है तवा अतुम, यहाँ पर तवा अतुम का लफ्ज आप देखें तो आपको बड़ा मुश्किल सा जो है वो महसूस हो रहा है, लेकिन क्या है कि और अगर तुम आपस में वादा करते, तवा अतुम किस चीज का वादा करते कि आपस में तय करते कि जंग करनी है, कौन आपस में ये तय करता, मुसलमान और मक्का के काफिर अगर आपस में वादा करते जंग के बारे में, प्लानिंग करते तय करते कि ठीक है जंग करेंगे, तो क्या होता, लख तलफ तुम अलबत्ता आपस में इख्तिलाफ करते, फिल मियाद, तवा तुम का भी जो रूट है वही मियाद का भी रूट है, मियाद जो है वो ऐन दाल, और इसके मानी क्या होते हैं, ये तयशुदा वक्त को भी कहते हैं और तयशुदा जगह के लिए भी लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो तयशुदा वक्त और जगह के बारे में तुम्हारे दरमियान में इख्तलाफ हो जाता। क्यों इख्तलाफ होता, इसलिए कि काफिरों पर मुसलमानों का रोब और दबदबा बैठा हुआ था और मुसलमानों के दरमियान ही ये इख्तलाफ पैदा हो जाता कि हम उनके साथ मुकाबला उनका कैसे करें। लख्तलफ तुम फिल्मी आद, तो तुम जरूर इस मौके पर जो है वो आपस में इख्तलाफ कर लेते, पहलू ते ही कर लेते। वलकिल्ले यक्दी अल्लाहु अमरन काना मफूला, लेकिन ये जो कुछ पेश आया, ये जो जंग हुई, जो गज़वा बदर की जंग है, ये क्यों हुई, जो कुछ पेश आया वो इसलिए था कि जिस बात का अल्लाह फैसला कर चुका था उसे वो जहूर में ले आए, बोले कि यक दिया ताकि जो है वो पूरा करे, कजा करना ना जैसे एक काजी फैसला करता है, ताकि पूरा करे अल्लाह अमरन वो काम, यानी जंग जो थी, काना मफूला वो हो कर रहे, ये यहलिका मन हलका, ताकि जो मरे हिलाक हो, मन हलाका जिसको मरना है, अम बैये नतिन वो दलीले रोशन के साथ मर जाए, खत्म हो जाए, वह यहया और जीता रहे, मन हया जिसको जीता रहना है, अम बैना दलीले रोशन के साथ, क्योंकि बैयना लफ्ज जो है इसके अंदर जो है वो रोशनी दलील वाजे होना पाया जाता है, किसी चीज का वाजे होना और दूसरे को वाजे कर देना। وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور پھر فرمایا کہ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو اللہ کی صفات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ جو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے، اور کس کو زندہ رہنا ہے؟ اسلام کو۔ مرنا کس کو ہے؟ کفر کو، شرک کو۔ کس کو ہلاک ہونا ہے؟ کافروں کو، مشرکوں کو۔ اور بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ کا یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو خدائی ہے وہ کس اصول پر چلتی ہے، کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے۔ اللہ کو خوب خبر ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بڑی اہم دلیل جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ غزوہ بدر جو ہے دراصل یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے یوم الفرقان قرار دیا۔ سب نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کی فتح کس کے ساتھ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ کہ حق کی حمایت ہو، اسلام سر بلند ہو، اسلام قوت بن کر ابھرے، اور باطل جو ہے اس کو شکست ہو، باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح دینا چاہتا تھا، ان کو نصرت دینا چاہتا تھا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دونوں فوجوں کی آپس میں مٹھ بھیڑ کر دی، ورنہ مسلمانوں کو بھی اپنی تعداد کم لگ رہی تھی، اگر پلاننگ کر کے جاتے تو وہ نہ جنگ کر پاتے اور کافر بھی نکل نہ پاتے۔ تو یہ کون تھا؟ یہ اللہ ہی ہے جو کہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو تائید کی ہے دین اسلام کی، جو حمایت کی ہے، جو اللہ کی سکیم ہے، جو اللہ کی پلاننگ ہے، یہاں پہ اس کا جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کہاں مسلمان، کہاں قریش، کہاں قافلہ۔ اللہ تعالیٰ کو سب کا پتا تھا کہ قافلے والوں کی پلاننگ کیا ہے، ابو جہل کیا چاہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جو کافروں کی فوج مکہ سے آ رہی تھی اس کا سردار ابو جہل تھا، اور جو قافلہ تجارتی تھا اس کا سردار ابو سفیان تھا، مسلمانوں کا جو قافلہ ہے اس کا سردار جو ہے ان کے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ سب قافلے جو تھے، یہ سب لشکر جو تھے، یہ لوگ کیا سرگوشیاں کر رہے تھے، یہ کیا باتیں کر رہے تھے، ان کے کیا ارادے تھے، ان کی کیا نیتیں تھیں، ان کی کیا پلاننگ تھی۔ اللہ سمیع اور علیم ہے، اللہ کو سب کا پتا تھا کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کو سب کا پتا تھا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اللہ رب العزت سن بھی رہا تھا اور اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا بھی تھا۔ اب یہاں پر ایک اور خاص بات آپ یاد رکھیں کہ جب ابو سفیان جو تھا وہ اپنے مال کو، جو تجارت کا مال تھا، اس کو حفاظت سے لے جانے میں کامیاب ہو گیا، تو اس نے جو ہے وہ ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ میں چونکہ واپس خیریت سے پہنچ چکا ہوں، میں یہاں سے مسلمانوں سے بچ کر نکل گیا ہوں، تو آپ لوگ مکہ میں واپس چلے جائیں، جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے اس وقت جو ہے وہ واپسی سے انکار کر دی گیا واپسی سے انکار کر دیا اور تکبر سے کہنے لگا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ بدر کے چشمے میں پہنچ کر خوب شراب نہ پی لیں اور اونٹ ذبح کر کے ارد گرد کے قبائل کی ضیافت نہ کر لیں۔ تو ابو جہل جو ہے بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ چلو ہمارا تجارتی قافلہ جو ہے یہ بچ کر خیریت سے واپس آ گیا ہے، تو واپس آ جاتا، واپس آنے کی بجائے جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے واپس نہیں جانا، اور ہم اب جا کر اپنی قوت، اپنی شان و شوکت جو ہے اس کو وہاں پر جو ہے وہ جا کر دکھائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابو جہل اب بڑے کبر اور غرور میں تھا، شہرت پرستی کے جذبے میں تھا، اس نے قسم کھا کر کہا کہ ہم اس وقت تک واپس نہ ہوں جب تک کہ ہم مقام بدر پہ جا کے اپنی فتح کے جھنڈے نہ گاڑ لیں یا اپنی فتح کا جشن نہ منا لیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا یہ فخر، اس کا یہ غرور، اس کا نتیجہ کیا نکلا कि वो भी और उसके बड़े बड़े साथी जो थे वहीं पर ढेर हो गए और एक गड़े में जो है वो वहां पर डाल दिए गए। तो यहां पर इन्हीं सब बातों की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है। फिर आयत नंबर 43 जो है इसमें खास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक ख्वाब दिखाया था, यहाँ पे अपने दूसरे मौजे का अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वे बदर के मौके पर थोड़ी देर के लिए जब आंख लगी और आपने ख्वाब में देखा कि काफिर जो है बहुत ही कम है, अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में काफिरों की तादाद थोड़ी दिखाई और वही तादाद आपने जब सहाबा के सामने बयान की तो इससे सहाबा के हौसले बढ़ गए। इसके बरक्स काफिरों की तादाद ज्यादा अगर दिखाई जाती तो सहाबा में पस्त हिम्मती पैदा हो जाती, उनमें वहमी इख्तलाफ पैदा होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों बातों से बचा लिया। यहाँ पे उसी ख्वाब का जिक्र है, इसके फिर मानी क्या है, उस गुरु याद करो वो वक्त, यूरी का हमल्लाहू फी मनामी का कलीला, यूरी का हमल्लाहू जब दिखाया उन्हें काफिरों को अल्लाह ने फी मनामी का तुम्हारी ख्वाब में, यहाँ पे का की जमीर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रही है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ख्वाब में काफिरों को जो है वो कितना दिखाया गया था, कलीला थोड़ा, वलो अरा कहुम और अगर तुम्हें दिखाया जाता उनको कसीरन बहुत, ला फशिल तुम तो तुम जी छोड़ देते। और आप ये लफ्ज पहले ही पढ़ चुकी हैं, फा शीन लाम, इसके मानी होती हैं कि हिम्मत हारना, लड़ाई और शिद्दत के वक्त बुस्तली दिखाना, इब्तदा ही में दिल छोड़ देना, हिम्मत हार देना। तो अगर जो है तुम्हें काफिरों की तादाद ज्यादा दिखाई जाती तुम क्या करते, लफशिल तुम हिम्मत हार देते। नंबर दो, वला तनाजा तुम फिल अमरी, और अमर से मुराद यहां पे लड़ाई है और लड़ाई के मामले में तुम झगड़ते, लड़ाई के मामले में तुम झगड़ना शुरू कर देते। और लड़ाई के मामले में झगड़ने से मुराद क्या है कि तुम्हारे दरमियान जो है वो काफरों के मामले में जो रोब और दहशत पैदा होता तो तुम आपस में झगड़ने लगते कि इख्तलाफ करने लगते कि हमें नहीं जाना, हम उनका कैसे मुकाबला करें। वला तनाजा तुम फिल अमरी, और लड़ाई के मामले में तुम झगड़ना शुरू कर देते, वला किन अल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह ही ने तुम्हें इससे बचा लिया, इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर, यकीनन वो सीनों का हाल तक जानता है। अब आप देखें कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो यौमुल फुरकान गजवाए बदर के दिन जो मौजे अल्लाह ने दिखाए उस मौके पर, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उन मौजात का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये भी मेरा तुम पर एक एहसान है, ये मेरा एक फजल है तुम पर, ये मेरा एक इनाम है कि काफरों की तादाद जो कि ज्यादा थी मैंने ख्वाब में उसे जब थोड़ा दिखाया तुम्हें तो तुमने वही तादाद जब सहाबा को बताई अपने साथियों को बताई तो वो जंग के लिए तैयार हो गए। और अगर कहीं तुम्हें पहले से पता चलता कि उनकी तादाद ज्यादा है तो फिर तुम्हारे लिए जो है वो जंग के लिए निकलना तैयार होना मुश्किल होता। कैसे, दो चीजें तुम में पैदा हो जाती, फशिल तुम और दूसरी चीज क्या थी, तनाजा तुम फिल अम्र। तो इससे क्या बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है कि ये अल्लाह ताला की एक खास मदद थी, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक खास इनाम था। और इनाम क्यों किया, ताकि मुसलमानों के हौसले ना टूटने पाए, क्योंकि जो फौजें जंग जीती हैं तो वो हौसले की वजह से, ईमान की वजह से, विल पावर की वजह से जो है वो जंगे जीत जाती हैं। फिर फरमाया वह इज यूरी कुमुहुम, और वो वक्त भी याद करो, यूरी कुमुहुम दिखाई तुम्हें वो फौज, इजिल तकई तुम जब तुम आमने सामने हुए, तो जब तुम्हें वो काफिरों की फौज दिखाई, इजिल तकैतुम, जब तुम आमने सामने हुए यानी मुसलमान और काफिर एक दूसरे के सामने आए, फी आयुनकुम, तुम्हारी आंखों में। अब यहाँ पे अब दूसरे उस वाक्य का जिक्र किया जा रहा है, जब मुकाबले का वक्त था और मुसलमानों की निगाहों में दुश्मनों को थोड़ा दिखाया गया, वह युकल्लिलुकुम, और थोड़ा दिखाया तुम्हें यानी मुसलमानों को थोड़ा करके दिखाया गया, किनकी नजरों में, फी आयुनहिम, उनकी आंखों में, काफिरों की निगाहों में मुसलमानों को कम करके पेश किया गया। क्यों? लियक्दी अल्लाहु अमरन काना मफूला, ताकि कर डाले अल्लाह जो काम करना मंजूर था, ताकि जो बात होनी थी उसे अल्लाह जहूर में ले आए। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है एक और खास चीज की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है, और वो ये है कि एक ऊपर आपने पढ़ा ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में काफिरों का लश्कर थोड़ा दिखाया गया, और आपने सहाबा को बताया कि काफिरों की तादाद कुछ ज्यादा नहीं है, और जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर जो है वो हिम्मत पैदा हुई। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब दोनों फौजें आमने सामने हुई, तो उस वक्त जो है उस वक्त मुसलमानों को जो काफिर थे वो ज्यादा नहीं लगे। अब आप देखें कि मैदाने जंग है, बकायदा लड़ाई शुरू हो गई, और मुसलमान जब काफिरों को देख रहे हैं तो मुसलमानों को काफिर ज्यादा नहीं लग रहे। अब दूसरी तरफ क्या है कि काफिर जो हैं उनको मुसलमान जो हैं वो कम करके दिखाए गए। क्यों? ताकि वो हौसला करके आगे बढ़े और वो ये सोचें कि अच्छा इतने थोड़े से हैं तो इनको खत्म ही कर दिया जाए, तो वो आगे आए, वो भी मैदान में आए, और मुसलमानों को काफिर इसलिए कम दिखाए गए ताकि मुसलमान जो है वो उनकी कसरत को देखकर मुसलमानों के अंदर खौफ और दहशत ना बैठ जाए, उनके अंदर कहीं बुजदिली और पस्त हिम्मती पैदा ना हो जाए, कहीं वो लड़ने से गुरेज ना कर लें। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपने इनामात का, अपनी ताईद का, अपनी नुसरत का खास तौर पर जो है वो जिक्र कर रहे हैं, और वाकई ये अल्लाह का जो है वो इनाम था। तो यहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सब कुछ जिसने किया वो करने वाला कौन था? ये अल्लाह ही था। अब तो आप देख लें कि कभी ऐसा भी होता है ना कि जो है वो जब लोग जो है वो डरते हैं तो रस्सी को सांप समझ लेते हैं, आदमी गुलहरी को पहाड़ और बकरी को शेर समझने लगता है, ऐसा होता है ना। अब यहां पर ये बात बताई जा रही है कि ये जो कुछ भी किया ये किसने किया? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया, ताकि जो बात होनी थी उसे अल्लाह जहूर में ले आए। वा इल्लल्लाहि तुर्जाउल उमूर, और आखिरकार सारे मामलात अल्लाह ही के सामने जो है वो पेश होने हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि हमारी नजरों में अपना मुकाबिल लश्कर जो काफिर थे ऐसा नजर आ रहा था कि मैंने अपने करीब के एक आदमी से कहा कि ये लोग 90 आदमियों की तादाद में होंगे। इस दूसरे शख्स ने कहा नहीं, 100 लोग होंगे। अब आप देख लें कि सामने लश्कर है और आपस में सहाबी बात कर रहे हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह नो कह रहे हैं कि ये 90 होंगे, ऐसे लग रहा है। दूसरे सहाबी कहते हैं नहीं, 90 नहीं, मेरा ख्याल 100 होंगे। कितनी तादाद अल्लाह ने उनको कम करके दिखाई, ये क्या था? ये सब अल्लाह का जो है वो एहसान था कि आमने सामने लश्कर खड़े हैं और उनको जो है वो इतना कम करके जो है वो दिखाया जा रहा है। तो ये क्या था? ये मोजजा था कि आंखों ने गलत अंदाजा लगाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में जो है वो भी कम करके उनको जो है वो दिखाया गया। अब आप देखें कि ये जो आखिरी आयत है वाइलल्लाहि तुर्जाउल उमूर, इसके मानी असल में ये हैं कि सारे काम अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं, कि जो चाहे वो हुक्म दे, जो चाहे वो करे, किल्लत को कसरत कर दे, कुव्वत को ज़ोफ़ कर दे, ज्यादा को कम करके दिखा दे। तो ये करने वाला कौन है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत है। फिर ये जो अगली आयतें हैं, आयत नंबर 45, यहां से मुसलमानों को जिहाद में कामयाबी की कुरानी हदायात बताई जा रही हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। तो असल चीज क्या है? ईमान। कि ए ईमान लाने वालों, इजा लकी तुम फियतन, कि जब तुम जो है वो मुकाबला करो किसी ग्रोह से, लकी तुम जो है वैसे इसके मानी है मिलना, और यहां पर ये लफ्ज जो है ये मुकाबले के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जब तुम किसी फियतन ग्रोह से, कि जब तुम किसी ग्रोह से जो है वो मिलो, से जंग करो, तो सबसे पहले क्या करना है, फसबुतू, तो पहली सिर्फ तुम्हारे अंदर ये होनी चाहिए कि तुम जो है वो साबित कदमी दिखाओ, तुम साबित कदम रहो। अच्छा यहां पर अब आप देखें कि साबित कदमी से क्या मुराद है, साबाता इसके मानी है साबित रहना, जमना, और जमने से मुराद सबाते कल्ब और सबाते कदम, दिल का मजबूत होना और कदमों का मजबूत होना दोनों शामिल है। जब तक किसी शख्स का दिल मजबूत ना हो, साबित उसका दिल साबित ना हो, उसके कदम और उसके जिस्म के जो अज़ा हैं वो भी साबित नहीं रह सकते। और ये ऐसी चीज है जिसको हर मोमिन और काफिर जानता है, समझता है, तो यहाँ पे इसलिए मैदान जंग का सबसे पहला और सबसे कामयाब हथियार है वो बताया जा रहा है, सबाते कल्ब व कदम, क्योंकि इसके बगैर जो है ना दूसरे तमाम हथियार जो है ना वो बेकार है। कहीं भी कोई भी काम, जैसे मसलन आप क्लास ही लेना चाहती हैं, 1 साल की क्लास है, आपका ये कोर्स 1 साल का है, अब आप देखें, आप जरा अपने दिल का जायजा लें कि रमजान के बाद आप आज क्लास ले रही हैं, तो अपने दिल को कितना आपको समझाना पड़ रहा है, कितना बताना पड़ रहा है कि दिल का जमाव, दिल का करार और सुकून, जब दिल ठुक जाता है किसी चीज पर, दिल जम जाता है, तो फिर आप सारा आपका जिस्म, आपके औकात, आपकी सलाहियतें आप उसके मुताबिक सेट करना शुरू कर देती हैं। आपने इम्तिहान देना है, आपने MBBS डॉक्टरी का इम्तिहान देना है, या आपने इंजीनियरिंग का, या किसी भी सब्जेक्ट का, आपने रोड टेस्ट पास करना चाहती हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहती हैं, अगर आप आपकी हवाइयां उड़ रही हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपका दिल धक धक कर रहा है, तो आप खामखा गलती होती चली जा रही है, बगैर वजह के ये आप जो काम बड़ा अच्छा कर रही थी वो गलत होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर पहली चीज बताई जा रही है फसबुतू, और फसबुतू में दो चीजें शामिल है, दिल का सुकून, करार, जमाओ, उसके साथ कदमों का। जब दिल और कदम दोनों जम जाते हैं ना, पूरा जिस्म साथ देने लगता है, तो इसी तरह अल्लाह से मोहब्बत में, आखिरत की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में, कुरान की क्लास ही है जैसे है, ये आसान तो नहीं है, और खास तौर पे फिर इवनिंग की क्लास, आप लोग जॉब करते हैं, सारा दिन जॉब के बाद जब आप थक हार के अपने घर के काम, बच्चे उनके साथ साथ, फिर आप क्लास की तरफ लपकते हैं, तो पहला, क्योंकि अब आप देखें कि जब तुम्हारा किसी ग्रोह से जो है वो, किसी ग्रोह से तुम्हारा मुकाबला हो, तो एक तो बकायदा मैदान जंग की बात है, और दूसरी जंग क्या है, जो हर वक्त दुश्मन से जंग है, और हमारा दुश्मन कौन है, शैतान है, इबलीस है, जो कि असली और अब्दी दुश्मन है, तो बकायदा जो काफिर हैं उनसे हो, या फिर ये कि हर वक्त की जो है अपने नफ्स से है, शैतान से है, इबलीस से है, गुनाहों से है, तो क्या करना है, नेकी के मामले में साबित कदम रहना है। नंबर दो, वज़कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह को कसरत से याद करो। मुझे कुरान की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वस्कुरुल्लाह कसीरन, अल्लाह को कसरत से याद करो। अब आप देखें कि अगर आप पूरे कुरान को खोलें, आप देखेंगे कि पूरे कुरान में कहीं भी अल्लाह ने किसी इबादत को कसरत से करने का हुक्म नहीं दिया। ये नहीं कहा कि सलातन कसीरन, सियामन कसीरन, ये नहीं कहा कि कसरत से नमाजें पढ़ो, कसरत से रोजे रखो, सिर्फ एक अल्लाह का जिक्र है जिसको कसरत से करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ना तो सबसे पहली बात कि ये जो जिक्र है अल्लाह का, जो अल्लाह की याद है, ये बड़ी आसान इबादत है, इसमें ना कोई बड़ा वक्त खर्च होता है ना मेहनत, और अगर आप कपड़े इस्त्री कर रही हैं, आप खाना पका रही हैं, आप ड्राइविंग कर रही हैं, आप अपने काम करती जा रही हैं, और उसके साथ साथ आप अल्लाह को याद भी कर सकती हैं, और अल्लाह की याद के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप किस एंगल में बैठी हुई होना चाहिए, आपको वुजू, तहारत, लिबास, किबले वगैरह की कोई कैद नहीं है, हर शख्स हर हाल में, बावजू बेवजू, खड़े बैठे लेटे, अल्लाह को जो याद जो है वो कर सकता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र सिर्फ जबान या दिल से ही जिक्र करने को नहीं कहते, بلکہ جب آپ جائز کام کرتی ہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی ہیں تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کل متی ذاکر، ہر اللہ کی اطاعت کرنے والا جو ہے دراصل وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. اگر آپ جو ہیں وہ سوتی ہیں اور سوتے وقت جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے صحیح کروٹ لے کر دعا پڑھ کر سوتی ہیں تو بھی آپ ذاکر ہیں. عالم کی نیند بھی عبادت میں داخل ہے، کیونکہ عالم اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا سونا جاگنا سب باتیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں. تو یہاں پر یہ ہے اصل بات. وذکر اللہ کثیرن، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. جنگ میں ہیں، گھر کے اندر ہیں، سکول میں ہیں، کلینک میں ہیں، مال میں ہیں، کہیں بھی ہیں، بس اللہ کو کسی وقت بھولنا نہیں ہے. کیوں؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ جب تم جو ہے وہ ثابت قدمی دکھاؤ گے قلب اور قدم کی، اور اس کے ساتھ جب اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے تو ضرور تم فلاح تمہیں مل جائے گی، ضرور تمہیں کامیابی مل جائے گی. یہ نہیں کہا، کہا ہو سکتا ہے. لعلہ جو ہے نا یہ شاید کے معنی دیتا ہے، ہو سکتا ہے، شاید. لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. فا لام حا، اس کے معنی ہوتے ہیں چیرنا پھاڑنا. فلاح ان کسان کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ کسان جو ہے وہ زمین کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، ڈگنگ کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، خون پسینہ کرتا ہے، تب کہیں جا کر اس کو کامیابی ملتی ہے. بالکل اسی طرح جو ہے یہ جو جنت ہے، جو رب کی رضا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی. اور ضروری نہیں کہ جب انسان نیک اعمال کرے تو مل جائے. لعلکم تفلحون، شاید کہ تمہیں فلاح مل جائے. تو شاید کیوں کہا؟ کہ پتہ نہیں تمہاری نیت کیا تھی، تمہارے اندر اخلاص تھا کہ نہیں، تمہارا طریقہ ٹھیک تھا کہ نہیں. ظاہری طور پر تو تم نیک کام کر رہے تھے، لیکن اندر ہڈن کیا تھا اور صحیح طریقے سے کیا کہ نہیں کیا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ہو سکتا ہے، تو ایک امید. پھر تیسری صفت یہ بتائی اللہ کے راستے میں جہاد کی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ ہے اصل چیز، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے یہ اصل چیز ہے. جب انسان اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ کی نصرت ملتی ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ کی مدد مل جائے، آپ کو اللہ کی طرف سے نصرت ملے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی. نہ اللہ کو ناراض کرنا ہے، نہ اللہ کے رسول کو ناراض کرنا ہے، کیونکہ معصیت اور نافرمانی سے، گناہوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی مول لے لی، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی تائید سے، اللہ کی نصرت سے محرومی حاصل کر لی، اس محرومی کے اسباب پیدا ہو گئے. تو یہاں پر یہ بات جو ہے وہ اہم ہے جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور یہاں پر خاص طور پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ جنگ کے موقع پر مکمل ڈسپلن کا ثبوت دیا جائے. جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے اس پر بے چون و چرا عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر دل میں ذکر نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی یاد نہیں ہے، تو جسم کے اعضاء جو ہیں اس میں جو ہے وہ پھر ایمان نہیں ہے، اس میں ثبات نہیں ہے، پھر جماعت کا نظم جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی ہوا جو ہے وہ اکھڑ جاتی ہے. تو اہم بات پھر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. تو اور خاص طور پہ نازک حالات میں یہ اطاعت بڑی ہی اہم بن جاتی ہے. ویسے تو ہر حال میں ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. پھر چوتھی بات کہی، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع نہیں کرو. تنازع کے معنی کیا ہے؟ جھگڑنا. جیسے نون زے عین جو ہے اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا. جیسے روح کو جب جسم میں سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، سورت سورت جو نازیات ہے وہاں پہ بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا نا کہ ون نازیاتی خرقہ، کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو روحیں ہیں وہ جسم سے کھینچ کر نکالی جاتی ہیں، خوب ڈوب کر کھینچ کر ان کو نکالا جاتا ہے. تو جو تنازع ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں دو لوگ ہیں اور ان کی آپس میں جو ہے وہ کھینچا تانی ہو رہی ہے، ان کا آپس میں جو ہے وہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ولا تنازعوا، اور تم آپس میں جھگڑو نہیں، فتفشلوا وتذهب ریحکم. فتفشلوا اس کے معنی کیا ہے کہ پھر تم میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، پھر تم لوگ جو ہے وہ بزدل ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، سست پڑ جاؤ گے. فشل آپ پیچھے ہی پڑ چکے ہیں، ہمت ہار دینا، بزدلی دکھانا، دل چھوڑ دینا، پھر تم جو ہے وہ بزدلی دکھاؤ گے. وتذهب ریحکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہاں پہ یہ جو جھگڑا ہے نا، تنازع جھگڑا، اس کے دو وجوہ، اس کے دو اثرات بتائے جا رہے ہیں کہ جو لوگ جھگڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ہوا اکھڑ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثلا گھر کے اندر میاں بیوی ہیں وہ جھگڑتے رہتے ہیں، اس کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ گھر کے اندر اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو پھر خاندانی جو نظام ہے، سسٹم، اس کے اندر ایک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور ہوا اکھڑ جاتی ہے. بچوں کے دل میں والدین کا احترام نہیں رہتا، خاندان کے اندر اس جوڑے کا ایک مقام نہیں رہتا. اسی طرح اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو اس کلاس کا کے بارے میں جو ایک وقار ہے، ایک عزت ہے، وہ سوسائٹی کے اندر نہیں رہتا، اس انسٹیٹیوٹ کی ہوا اکھڑ جاتی ہے. تو اگر آج جیسے مسلمان ہیں، آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں مسلمان ممالک آپس میں لڑتے ہیں، یا مسلمان جماعتیں، یا مسلمانوں کے جو اسلامک سینٹر ہیں، مساجد ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی پھر ہوا اکھڑ جاتی ہے نا، مسلمان جو ہے ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ان کا ایک جو روب ہے، ان کا ایک جو دبدبا ہے وہ سوسائٹی سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر دشمن جو ہے اس کو بڑی آسانی سے شکست دے دیتا ہے، زیر کر لیتا ہے. اور ہم، میرا اور آپ کا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے میرا اور آپ کا دشمن. اور ویسے بھی جو اسلام کو قبول نہیں کرتے وہ تو ہیں ہی، لیکن شیطان جو ازلی اور ابدی دشمن، جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہاں پر چوتھی جو اہم صفت بتائی گئی کیا، کہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے. اور دو بہنیں ہیں تو جھگڑنا نہیں ہے، دو بھائی ہیں تو آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، میاں بیوی ہیں تو جھگڑنا نہیں ہے، والدین اور بچے ہیں وہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. جیسے اکثر والدین کو یہ فکر ہوتی ہے کہ والدین بچوں کو اکٹھا رکھتے ہیں، والدین جب چلے جاتے ہیں دنیا سے تو بہن بھائی پھر آپس میں لڑنے لگتے ہیں، یا گھر کے اندر تھوڑی دیر والدین موجود نہ ہو تو آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم نے آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، ورنہ دو کمزوریاں تمہارے اندر پیدا ہوں گی، ایک یہ کہ فتفشلوا تم کمزور ہو جاؤ گے، فتذهب ریحکم اور تمہاری ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے گی. پانچویں بات کہی، واصبروا صبر سے کام لو. اور صبر سے مراد کیا ہے کہ اب جنگ کا موقع ہے، جلد بازی، گھبراہٹ، یہ نہیں، اس کا مظاہرہ نہیں کرو، اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھو، ٹھنڈے دل سے جو ہے وہ قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرو. اور آپ دیکھیں کہ مسلمان کے لیے تو زندگی کا ہر موڑ ہی ایک محاذ ہے، ایک جنگ ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر. بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے خطرات ہیں، مشکلات ہیں، تو ایسے میں اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ مشکل چیز کو سامنے دیکھیں تو قدموں میں لغزش آ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی موقع ایسا ہے کہ جو فری مد مقابل ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، شوہر یا کلاس فیلو، تو آپ جو ہیں وہ غصے کا شکار ہو جائیں، کوئی بے موقع غلط حرکت آپ سے ہو جائے. کیونکہ مصائب کا جب حملہ ہوتا ہے، حالات بگڑتے نظر آتے ہیں تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ گاڑی چلا رہی ہیں روڈ کے اوپر تو بھی ساتھ والا گاڑی والا تنگ کر رہا ہے، یا وہ اوورٹیک کر رہا ہے، یا آپ کا رائٹ تھا، اب کیا ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے سپیڈ تیز کر دی، یا کچھ بھی آپ نے غلطی کر لی. اور اسی طرح گھر کے اندر بھی बाज़ुकात जो है वो आपकी गलती नहीं होती, दूसरे की गलती होती है। तो क्या होता है कि उस वक्त जो है वो आप जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, अपने जज्बात और ख्वाहिशात को काबू में नहीं रखते, तो नतीजा क्या निकलता है कि फिर जो है वो हालात खराब होते चले जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ही कमजोर हैं। और हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें साबित कदमी भी दे, सब्र भी दे, और सब्र में ये सारी चीजें जो है वो शामिल हैं कि दुनिया के लिहाज से फौरन जो है दुनिया को देकर फैसले ना किए जाएं, बल्कि आखिरत को सामने रखते हुए जो है वो फैसले किए जाएं। तो सबर जो है इसकी तारीफ मैंने पहले भी आपको बताई थी कि सबर किसे कहते हैं, इन्नमा सबरु इंदा सदमतिल उला, कि सबर जो है वो सदमे की पहली चोट पर होता है। और एक बात आप याद रखें, बड़ी ही खूबसूरत बात है, आप सोचती होंगी कि जैसे बाज़ुकात बेटियां अपने वालदैन से कोई भी अपने मसाइल बातें करती हैं तो वालदैन हमेशा कहते हैं कि बेटा सबर करो, और बच्ची को वालदैन हमेशा समझाते हैं, बेटी हो या बेटा वालदैन तो सभी को समझाते हैं। तो अब यहाँ पर बड़ी अच्छी खुशखबरी दी गई है आयत नंबर 46 में, इन अल्लाह मअ सबिरीन, यकीनन अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। अब आप देखें कि सबर करना बड़ी तलख बात है, बड़ी मुश्किल है, और जो है वो अब यहाँ पे इसीलिए उसका इनाम बताया कि जो सबर करते हैं अल्लाह हर वक्त हर हाल में उनका रफीक होता है, उनके साथ होता है। ये इतनी बड़ी दौलत है कि दोनों जहान की सारी दौलतें भी इसके मुकाबले में जो है ना वो कमजोर हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मैदान जंग में ये खुतबा दिया, ऐ लोगो, दुश्मन से मुकाबले की तमन्ना ना करो, बल्कि अल्लाह ताला से आफियत मांगो, और जब नागुजीर तौर पर मुकाबला हो ही जाए तो फिर सब्रो सबात को लाजिम पकड़ो, और ये समझ लो कि जन्नत तलवारों के साए में है। तो असल चीज जो है वो क्या है कि सब्र करना, और पूरी जिंदगी जो है वो सब्र है। और आप ये मत भूलें, हर शख्स का इम्तिहान हो रहा है, किसी के दुख का, किसी के सुख का, और कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो चैन की बांसुरी बजा रहा हो। कोई बड़े से बड़ा अमीर हो, लखपति हो, करोड़पति हो, डॉक्टर हो, बादशाह हो, हर शख्स आजमाइश में है, लेकिन हो सकता है उसकी आजमाइश का रुख आपकी आजमाइश से मुख्तलिफ हो। तो लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसकी आजमाइश की गई होगी? दुनिया में आए तो बाप ही नहीं था, आप सोचे कैसे दिन होंगे यतीमी के दिन। फिर उसके बाद जो है दादा चले गए, चचा चले गए, चचा गए, दादा, चचा, फिर ये के उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए, पैगंबर, तो कितनी तकलीफों में से गुजरे हैं, कितनी मुशक्कतें, कितनी मुसीबतें आपने बर्दाश्त की हैं। और मुझे अक्सर मैं इस बात पे सोचती हूँ कि यानी आपको या मुझको या किसी को, हम में से किसी पर जब आजमाइश आती है तो क्या होता है कि चेहरे पर जो है वो उदासी है, और बहुत ही संजीदगी आ जाती है, बहुत ही घुटे घुटे से रहने लगते हैं। लेकिन सहाबा कहते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुस्कुराने वाला किसी को नहीं देखा। तो ये है असल चीज के सबर जो है किया जाए तो फिर कैसे किया जाए। फिर आप देखें कि इन अल्लाह मअ सबिरीन, कि अल्लाह जो है वो सबर करने वालों के साथ है। अब आपने देखना है कि अल्लाह आपके साथ है कि नहीं, और कैसे पता चलेगा? अगर आप सबर करेंगी तो अल्लाह को अपने पास पाएंगी, अल्लाह को अपने साथ पाएंगी। फिर आयत नंबर 47 जो है इसमें, आयत नंबर 47 में जो है वो जिहाद की कामयाबी की एक और अहम सिफत बताई गई, वला तकूनू, और ना हो जाना, का के मानी होते हैं मानित, मानित अल्लाजीना, उन लोगों के, वला तकूनू कल्लाजीना, और उन लोगों की तरह ना हो जाना, उन लोगों के से रंग ढंग ना इख्तियार करना, खराजू मिन दियारहिम, जो अपने घरों से निकले थे तो उनकी शान क्या थी, बता रहा हूं वरिया अन्नास, ये है सिफ्त बताई गई कि वो लोग कैसे निकले थे, बता रंग इतराते हुए निकले थे, बा तो रा, बतारा, इसके मानी होते हैं इतराना, ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। हक से अकड़ना, मुतकबिराना तौर पर मुंह मोड़ना, बदमस्ती करना, सरकशी तारी हो जाना, बतर। तो जब वो घरों से निकले थे तो किस हाल में निकले थे? इतराते हुए, फखर करते हुए, अपने आप को बड़ा समझते हुए निकले थे, और वरियान नासी, और लोगों को दिखाने के लिए। रिया जो है इसका रूट आप पढ़ी चुकी हैं, रा हमजा या रा देखना होता है ना, रोया ख्वाब को कहते हैं, अरा दिखलाना, और रिया नुमाइश को कहते हैं, दिखावा। उर्दू में भी रियाकारी इस्तेमाल होता है ना। अब यहाँ पे कुफारे कुरैश की तरफ इशारा है, जिनका लश्कर जब मक्का से निकला तो इस शान से कि गाने बजाने वाली लौंडियां साथ थी, जगह जगह ठहर कर वो रक्स और सुरूद की महफिलें मुनक्किद कर रहे थे, शराब पी रहे थे, और जो कबीले रास्ते में मिलते तो अपनी ताकत, शौकत, अपनी कसरत तादाद और अपने सरो सामान का रूप जमाते थे, डींगे मारते थे कि भला हमारे मुकाबले में कौन सर उठा सकता है। तो ये कौन थे? ये अहले मक्का थे, कि अपने आप को जो है वो खूब जो थे वो खूब अपनी शान और शौक को जो है उसका मुजाहरा कर रहे थे, खूब अपने आप को जो थे वो बना रहे थे। तो इससे क्या बात पता चलती है कि मुसलमानों से कहा जा रहा है कि मुसलमानों, तुम जो है तुम्हारे अंदर बतर भी नहीं होना चाहिए, इतराना फखर करना भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा रियाकारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। ये करने वाले तो काफिर थे ना, और उनकी खूबी क्या थी? वह यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ये काफिर थे कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। तुम ऐसा ना करना कि कोई ऐसा अमल कि तुम लोगों को दीन से रोकने वाले बन जाओ। तुम्हारा इखलाक पाकीजा होना चाहिए, तुम्हारा मकसद अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ ही लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ जो है वो बुलाना जो है ये बहुत ही जरूरी है। तो आयत नंबर 47 में जो है एक तंबीह की जा रही है कि अहले मक्का का ये किरदार था कि उन्होंने अपनी तादाद पर, अपने सामान पर, अपनी कुव्वत पर, अपनी कसरत पर बतरन किया, दिखावा किया, इतराए, और दूसरा जो है वो रियाकारी कर रहे थे, और वो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। वल्लाहु बिमा यामलूना महीत, और जो कुछ वो कर रहे हैं वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। अब फिर आप देखें कि जो अगली आयत है, यहाँ पर एक और खास वाक्य की तरफ इशारा किया जा रहा है, आयत नंबर 48 में। वइज़ ज़य्यना लहुम शैतानु अमालहुम फ़क़ाला ला ग़ालिबा लकुमुल यौमा मिनन्नासी व इन्नी जारुल लकुम। जरा ख्याल करो उस वक्त का जबकि शैतान ने इन लोगों के करतूत इनकी निगाहों में खुशनुमा बनाकर दिखाए थे, और शैतान ने इनसे कहा था, वकाला ला ग़ालिबा लकुमुल यौमा मिनन्नास, कि आज कोई भी तुम पर गालिब नहीं आ सकता। क्यों? वह इन्नी जारुल लकुम, और ये कि मैं तुम्हारे साथ हूं। फलम्मा तरा अतिल फ़ियतानी, फिर जब दोनों ग्रोहों का जो है वो आमना सामना हुआ। तराती का मतलब है मुकाबिल हुई, आमने सामने हुई। अल्फियातानी दोनों जमाते, फियातुन वाहिद है और फियातान दो जमाते हैं। नकाफा नून काफ स्वाद, इसके माने क्या है? फिर गया। नून काफ स्वाद जो है इसके माने है फिरना, फेरना, फिर वो फिर गया। और ये लफ्ज जो है ये इनकलाब के लिए भी इस्तेमाल होता है, तब्दीली के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे खैर और शर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और क्योंकि इनकलाब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और दूसरे इसके मानी है कि फिरना, हटना, और जब हटने और फिरने के लिए ये लफ्ज आता है तो नेक कामों से फिरने के लिए फिर इसका इस्तेमाल होता है। तो नकसा अला अकबेही, फिर वो अपने दोनों जो एड़ियां थी उस पर फिर गया। अकब जो है वो एक एड़ी को कहते हैं, और अकेबैन दो एड़ियां, और अकेबेही फिर वो अपनी एड़ियों पर जो है वो फिर गया। ये असल में मुहावरा है। फिर इसके माने क्या है कि फिर वो उल्टे पांव फिर गया। वकाला, और कहा शैतान ने, इन्नी बरी हूं मिनकुम, के मैं तुमसे जो है वो बरी हूं। मैं तुमसे अलग हूं। बरी उनके मानी क्या है? बा रा हमजा इसका रूट है और इसके मानी है कि जैसे बेजार होना, जैसे बरात का इजहार करना कि मेरा तुम्हारा कोई साथ नहीं है। इन्नी अरा बेशक मैं देख रहा हूं, माला तरुना जो तुम नहीं देख रहे, मुझे वो फरिश्ते नजर आ रहे हैं जो तुम्हें नजर नहीं आ रहे। इन्नी अखाफुल्लाह और मुझे अल्लाह से डर लगता है। अल्लाह से डर का मुराद क्या है? अल्लाह के अजाब से, मुझे अल्लाह की पकड़ से डर लग रहा है। वल्लाहु शदीदुल इकाब और खुदा बड़ी ही सख्त सजा देने वाला है। ये शैतान की बात भी हो सकती है और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात भी हो सकती है। यहाँ पर एक खास वाक्य की तरफ जो है वो इशारा किया गया है। मुफस्सरीन कहते हैं कि कुरैश और बनू कुनाना में शदीद दुश्मनी थी। बनू कुनाना जो है ये एक कबीले का नाम था। जब अबू जहल अपना लश्कर लेकर मदीने की तरफ निकला तो अबू जहल को ये फिक्र हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि बनू कुनाना के लोग जो हैं पीछे से मक्का पर हमला कर दें। और अबू जहल इस सिलसिले में परेशान था तो उस वक्त शैतान जो था बनू कनाना के सरदार सुराका बिन मालिक की शक्ल में उसकी शक्ल में हाजिर हुआ और अबू जहल को यकीन दिलाया कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं, बल्कि मैं तो अपने लश्कर समेत तुम्हारे साथ आकर लड़ूंगा। और शैतान अपने साथ अपना एक झंडा और शैतानों का लश्कर भी लाया और अबू जहल को कहा कि तुम फिक्र ही ना करो, पीछे से हमले का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो खुद तुम्हारी तरफ से जो है वो उनके साथ लड़ने वाले हैं। तो उसने शैतान ने गज़वे बदर में शिरकत की शैतानों के एक लश्कर के साथ और क्या था, सुराका बिन मालिक की शक्ल में, बनू कनाना का जो सरदार था ना उस इलाके का बड़ा सरदार, उसकी शक्ल में इबलीस ने जो है शैतान ने शिरकत की। लेकिन जब गज़वे बदर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की मदद की तो शैतान जो है फरिश्तों के लश्कर देकर उल्टा भागा। यहाँ पे आप पढ़ी रही है ना कि नकसा अला कैबेही, फिर वो अपनी एड़ियों के बल पीछे हो गया। वकाला और कहने लगा इन्नी बरी हूं मैं, इनको मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, कोई वादा नहीं, मैं तुमसे अलग हूं। क्यों? इन्नी अरा मा ला तरउना, बेशक मैं देखता हूं जो तुम नहीं देखते। तो उसे क्या नजर आ रहा था? उसे फरिश्ते नजर आ रहे थे, फरिश्तों के लश्कर उसको नजर आ रहे थे। कहने लगा जो कुछ मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख सकते। इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। वल्लाहु शदीदुल इकाब और अल्लाह बड़ी सख्त सख्त सजा देने वाला है। इज यकूलुल मुनाफिकूना, जबकि यकूलु यकूलु जो है इसके मानी है कि वो कहने लगा अल मुनाफिकूना मुनाफिक, उस वक्त मुनाफिक कहने लगे वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन, वो जिनके दिल में मरज था। तो उनके दिल में किस चीज का मरज था? निफाक का मरज था। और बात कहते हैं कि ये मुनाफिक से मुराद जो है यहूदी भी हो सकते हैं, काफिर भी हो सकते हैं। और उनके दिल में ये मरज था निफाक का। गर्रहा उलाई दीनहुम, वो कहने लगे कि मगरूर कर दिया है इनको इनके दीन ने। मुनाफिक और वो सब लोग जिनके दिलों में रोग लगा हुआ था वो कह रहे थे कि इन लोगों को यानी इन मुसलमानों को तो इनके दीन ने जो है वो गर्रा में मुब्तला कर दिया है। अब गर्रा से मुराद क्या है? वो समझ रहे थे कि ये मुसलमान जो हैं ये दीनी जोश में दीवाने हो गए हैं। मुट्ठी भर मुसलमान और इतनी जबरदस्त कुरैश की जमात के साथ ये टक्कर लेने के लिए जा रहे हैं तो ये क्या है कि ये तो बस ऐसे ही हैं जैसे कि जो है दीवाने। गर्रहा उलाई दीनहुम, कि इन मुट्ठी भर मुसलमानों को इनके दीन ने जो है वो खब्त में मुब्तिला कर रखा है, गर्रा मगरूर कर दिया है। तो ये कौन लोग कह रहे थे? मुनाफिक यहूदी काफिर आपस में ये बातें कर रहे थे। फमन यतवक्कल अलल्लाह फइन्नल्लाह अजीजुन हकीम, हालांकि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो यकीनन अल्लाह बड़ा जबरदस्त और दाना है। वलौ तरा, और काश के तुम देखते उस हालत को, कौन सी हालत? इज यतवफ्फल्लज़ीना कफरू, इज यतवफ्फल्लज़ीना, यतवफ्फा जो है इसके मानी होते हैं जान निकालना ना, तो जब जाने निकालते थे या जब जाने निकालते हैं अल्लाजीना उन लोगों की कफरू जिन्होंने कुफर किया कि काश तुम उस हालत को देख सकते जब फरिश्ते जो थे वो जाने निकाल रहे थे मकतूल काफिरों की। क्या कर रहे थे? अलमलाइकातु यद्रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम। फरिश्ते मकतूल काफिरों की रूहें कब्ज कर रहे थे और उनके चेहरों और उनके कूल्हों पर जरबे लगाते जाते थे। यद्रिबूना मारते थे। वजूहहुम उनके मुंह को चेहरों को वो अदबार रहा और उनकी पीठों को। वो जीम हा वजह उन चेहरे को कहते हैं। वो जू इसकी जमा है। दाल बारा दुबर पीठ को कहते हैं। अदबार इसकी जमा है। तो उनके चेहरों और उनके कूलों पर उनकी पीठों पर मारते जाते थे और कहते थे वज़ूकू अज़ाब अल हरीक। केलो अब जलने की सजा जो है भुगतो। ज़ालिका बिमा कद्दमत ऐदीकुम। इस वजह से कि आगे भेजा बिमा कदमा जो कुछ तुमने आगे भेजा ऐदिकुम तुम्हारे हाथों ने। मान अल्लाह और ये के नहीं है अल्लाह। मान अल्लाह और ये के अल्लाह लैसा नहीं है बेजुल्लाम लिल अबीद जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। के वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है ना। तो ये तुम्हारे अपने अमल हैं जो तुमने अपने हाथों अपने आगे भेजे थे और उसका बदला जो है आज तुम्हें जो है वो उठाना पड़ रहा है। अब आप देखें कि यहां पर जो है एक और खास बात सामने आती है कि ये जो फरिश्ते जो है जब काफिरों की रूह निकालते हैं तो ये किस मौके का जिक्र है। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये दो आयतें जो हैं ये मौत के वक्त काफिरों के अजाब और फरिश्तों की तंबीहात के मुतल्लिक हैं। एक तो ये कि गजवाए बदर के मौके पर क्योंकि काफिर जो थे वो मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल आए थे और उस वक्त जो था उनका हाल क्या था। उस वक्त उनका काफिरों का हाल बड़ा ही इबरतनाक था क्योंकि मैदान बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरिश्तों के लश्कर से की और मैदान बदर में जो कुरैशी सरदार मारे गए उनके मारने में फरिश्तों का हाथ था। फरिश्ते क्या करते थे कि जैसे अगर मुसलमान जो थे वो काफिरों का मुकाबला करते और काफिर भागने लगते तो फरिश्ते जो थे उनको आगे से मारते। यानी इधर से एक मुसलमान मार रहे हैं तो उधर से फरिश्ते उनको मार रहे हैं। फरिश्ते उनके सामने से चेहरों पर पीछे से उनकी पीठों पर मार मार कर उनको हिलाक कर रहे थे और साथ साथ उनको ये बता रहे थे कि ये तो है दुनिया में जो तुम्हें मिल रहा है और आखिरत में जहन्नुम के अजाब की खबर जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और एक राय ये है कि यहाँ पर जो है ये आयात गजवाए बदर के दिन जो काफरों का अंजाम हुआ उसके सिलसिले में है और इसके साथ ही मुफस्सरीन कहते हैं कि ये आयात जो है इनका इनका मफहूम अमूमी है कि जब भी कोई काफिर मरता है तो फरिश्ताए मौत उनकी रूह कब्ज करने के वक्त उनके चेहरे पर और उनकी पीठों पर कूलों पर मारता है। बाज रवायात में आता है कि फरिश्तों के हाथ में आग के कोड़े और लोहे के गुर्ज होते हैं जिनसे वो मरने वाले काफिर को मारते हैं और वो जो अजाब होता है वो इतना दर्दनाक उसका मंजर होता है कि उस वक्त जो है वो जो काफिर हैं उसकी चीखो पुकार जो है वो इंसानों के अलावा बाकी जो चीजें हैं दुनिया की वो उनकी चीखो पुकार जो है वो सुनती हैं। और बात कहते हैं कि ये मारने का मंजर मौत के वक्त होता है फिर कब्र के वक्त होता है और यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि अगर आप देखते तो बड़ा ही इबरतनाक मंजर था। इससे ये बात पता चलती है प्यारी बहनों कि मौत का जो वक्त है ये बड़ा ही सख्त है खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि कुफ्र करने वाले हैं जो शिर्क करने वाले हैं जो निफाक मुनाफकत की बीमारी के अंदर मुब्तिला है। आप इन आयात से ये सोच कर ना गुजर जाएं कि ये यहाँ पे सिर्फ जो है वो काफिरों का या मुनाफिकों का जिक्र किया जा रहा है। वलौ तरा इज़ यतवफ्फल्लज़ीना कफरू और या कुफर जो है कुफर का मतलब है इनकार करना। तो सूरत अल फातिहा से लेकर अन्नास तक जो है आप देखें कि आपकी जिंदगी के अंदर कितना अमल पाया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस जरब से इस अजाब से इस पकड़ से हम सबको जो है वो बचा ले। اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان مسلمان بہترین بندوں میں شامل کر لے جو کہ عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ یہاں پہ خاص طور پہ ایک شروع میں کفر کرنے والے کہا، دوسری طرف آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ یہ ہے وہ جزا جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، پس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تو اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، جیسے عمل ہیں ویسے ہی اس کے مطابق جزا ہے یا پھر سزا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پہ سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ظلام بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور عبید بھی اسی کے لیے آیا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ تو اچھے عمل کریں اور اللہ جو ہے وہ ان پر زیادتی کرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ تو ہمیں ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ کرنا، تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لینا۔ کداب آل فرعون، یہاں پہ کدابے کا لفظ جو ہے وہ اہم ہے، کاف کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کا ماند مثل، یہاں پر بھی یہ لفظ جو ہے وہ یہ تشبیہ کے لیے آیا ہے۔ آگے ہے داب، دال حمزہ با داب، داب جو ہے جیسے اس کے معنی ہیں رینگنا، چلنا، اور پھر داب کے پھر معنی کیا ہوئے کہ جیسے دابا، رینگنے والے جانوروں کو بھی کہتے ہیں نا، چلنے والے جانوروں کو، اس میں انسان بھی شامل ہو جاتے ہیں، دابا چوپایوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور خاص طور پر اس کو پھر جانوروں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کداب آل فرعون، جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، جیسا چلتے رہے، یعنی ان کی عادت بن گئی، کس کی؟ آل فرعون کی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگ بھی، جو کچھ ان کے ساتھ پیش آتا رہا۔ کہ یہ جو معاملہ ہے نا، جیسا یہ جو مکہ کے کافروں کے ساتھ پیش آیا کہ ان کی جو ہے وہ جب روح نکلنے کا وقت تھا تو فرشتے کیسے ان کی پٹائی کر رہے تھے، تو یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا تھا، کداب آل فرعون، جس طرح آل فرعون کے ساتھ، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا۔ اور جو دوسرے لوگ تھے جو پہلے تھے ان سے، فرعون سے، آل فرعون جو ہے اس سے پہلے جو دوسرے لوگ تھے وہ کون تھے؟ جیسے قوم عاد، قوم ثمود، جو بھی اللہ کی نافرمان قومیں تھیں، ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اور یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا؟ کفروا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ تو جب بھی کوئی قوم جو ہے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہے تو اللہ ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیتا ہے، خواہ وہ مکہ کے کافر ہوں، خواہ وہ آل فرعون ہو، یا وہ قوم عاد، قوم ثمود، یا قوم صالح علیہ السلام، جو بھی نافرمان لوگ ہیں، جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کو پکڑ لیتا ہے۔ یہاں پر اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ جائزہ لیں، آپ اپنا جو رویہ ہے اس کے بارے میں سوچیں، اپنے جو عمل ہیں ان کا جو ہے وہ محاسبہ کریں کہ آپ جو ہیں وہ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں مسلمانوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں مکہ کے جو کافر ہیں ان کا کردار بھی نہیں اپنانا، تمہیں آل فرعون جو ہے اس کے رویے اور اس کے جو عمل ہے اس کے اوپر نہیں چلنا، اور جو پہلی قومیں اور گزری ہیں اللہ کی نافرمان، ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تذکیر کر رہے ہیں، اور تذکیر کا مقصد کیا ہے कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमल ऐसे हो जाएं। और फिर जो कुफर करते हैं अल्लाह की आयात से, अल्लाह तो उनके अजाबों पर उन्हें पकड़ लेता है, अल्लाह तो उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लेता है। फाखज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ने जो है उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया। इन्नल्लाहा क़वियुन शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह जो है कुव्वत रखता है और सख्त सजा देने वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सिफात का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कवी है, मजबूत है। अब आप देख लें कि यहाँ पे तंबीहात के बजाय अल्लाह ताला ने फैसला कुन अजाब का जिक्र किया है। अल्फाज और लहजे का फर्क आप देखें, कफरु बे आयात इल्लाही कज़्ज़बू बे आयात रब्बिहिम फाखज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, कैसी जबरदस्त अंदाज है ना। फाखज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम इन्नल्लाहा क़वियुन शदीदुल इक़ाब, कवी शदीद और अलिकाब, ये तीनों सिफात जो हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं, ये तीनों जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसकी नाराजगी को जाहिर कर रही हैं। फिर आयत नंबर 53 जो है इसमें दोबारा तस्कीर की जा रही है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये सब कुछ इसलिए है कि लम यकु मुगय्यरन, नहीं है वो बदलने वाला, यकु नहीं है वो मुगय्यरन बदलने वाला, नेमतन किसी नेमत को, अन अमहा जो इनाम की थी अल्लाह कौमिन किसी कौम पर, कि अल्लाह ताला जो है वो किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को दी भी हो उसको बदलने वाला नहीं है। हत्ता युगय्यिरू मा बि अन्फुसिहिम, जब तक कि वही ना बदल डाले जो कुछ उनके दिलों में है, जो जब तक कि वो कौम खुद अपने तर्ज अमल को नहीं बदलती। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि जब तक कोई कौम अपने आप को पूरी तरह अल्लाह की नेमत का गैर मुस्तहिक नहीं बना देती, अल्लाह इसे अपनी नेमत को छीन नहीं लेता। और जब कोई कौम जो है वो इतनी बुरी हो जाती है, इतनी नाफरमान हो जाती है कि अल्लाह की नाफरमानी करती है और अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना देती है, तो अल्लाह उस पर अपना अजाब जो है वो भेज देता है। तो यहाँ पर जो खास पैगाम दिया जा रहा है वो ये है कि अपनी जो हालात है ना उनको बदलना चाहिए। और अपने हालात क्या हैं कि अपने अमाल का रुख जो है वो इस्लाह की तरफ लाना चाहिए, दुरुस्तगी की तरफ लाना चाहिए। और अगर कोई कौम अपने अमाल का रुख इस्लाह की बजाय यानी नेक अमल करने की बजाय जो है वो अमाले बद करने लगे, ज्यादतियां करने लगे, तो फिर ये नेमत उनसे छीन ली जाती है और वो अजाब इलाही का मुस्तहिक जो है वो हो जाते हैं। आयत नंबर 53 जो है क्या पैगाम देती है कि नेक अमल करने चाहिए और बुरे अमल नहीं करने चाहिए। अपनी अमाल का रुख जो है वो गुनाहों की बजाय इस्लाह की तरफ करना चाहिए, इस्लाह की तरफ फेर देना चाहिए। और अगर कोई कौम जो है वो अपने अमाल का रुख जो है इस्लाह की बजाय गुनाहों की तरफ फेर देती है तो अल्लाह भी फिर उस कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह जो है वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। कदाब आले फिरौन, आले फिरौन वल्लजीना मिन कब्लिहिम, और इनसे पहलों की कौमों के साथ जो कुछ पेश आया वो इसी जाब्ते के मुताबिक था। अब आप देखें कि आले फिरौन का जिक्र दो दफा किया जा रहा है, वल्लजीना मिन कब्लिहिम और जो इससे पहले की कौमें थी। और आले फिरौन से पहले की कौमें जो थी वो कौन थी, कौमे आद, कौमे समूद, तो कौमे स्वाले, यानी वो सारी कौमें जिन्होंने अल्लाह की जो है वो नाफरमानियां की हैं। और यहां पर दो दफा जो जिक्र किया जा रहा है इसकी क्या वजह है, असल में इबरत के लिए है, तंबीह के लिए है। फरमाया कि कज़्ज़बू बि आयात रब्बिहिम। ऊपर क्या पढ़ा आपने आयत नंबर 52 में, कफ़रु बि आयात इल्लाही, यहाँ पे है कज़्ज़बू बि आयात रब्बिहिम के वहां कहा कि उन्होंने अल्लाह की आयात से कुफर किया, यहाँ पे कहा कि उन्होंने अल्लाह की आयात को झुठलाया। फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, बस अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों पर इन्हें हिलाक कर दिया। ऊपर कहा फअख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, इनके गुनाहों पर इन्हें पकड़ा, यहाँ पे कहा उनको तबाह कर दिया। वअग़रकना आला फिरौन, और आले फिरौन को जो है वो गर्क कर दिया। वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन, ये सब जालिम लोग थे, और जो जालिम है फिर अल्लाह तो उन पर जो है वो अपने अजाब का कूड़ा जो है वो बरसाया ही करता है। इन्ना शर्रद दवाबी इंदल्लाहि लजीना कफरू फहुम ला युमिनून, यहाँ पे अल्लाह ताला की नाराजगी उरूज पर है। बेशक शर्रा सबसे ज्यादा बुरे, यहाँ ये भी सम तफसील है, सबसे ज्यादा बुरे कौन है, अद्दवाबी, अद्दवाबी। अब आप देखें कि यहाँ पे दवाब जो है शरत दवाब कहा जा रहा है किनको, कुफर करने वालों को, जुल्म करने वालों को। और दवाब जो है इसके मानी अभी आपने पढ़े ना, दाबा रींगने वाले, तो ये दवाब का लफ्ज या दाबा का लफ्ज इंसान और जानवर दोनों पर बोला जाता है, लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल चौपायों के लिए होता है। और अब काफिरों का ताल्लुक इंसानों से नहीं है बल्कि जानवरों से है, और इसलिए ये नहीं कहा कि इन्ना शर्रन नास, अल्लाह ताला शर्रन नास भी तो कह सकते थे ना, इंसानों में सबसे बुरे, कहा नहीं, शर्रत दवाब, जानवरों में सबसे बदतर जानवर कौन है, कुफर करने वाले, किसके नजदीक, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, अल्लज़ीना कफरू जिन्होंने कुफर किया, फहुम ला युमिनून, और इसकी वजह क्या है कि ये लोग ईमान नहीं लाते। अल्लज़ीना अहत्ता, खुसूसन इनमें से वो लोग, अल्लज़ीना जिनके साथ आहत्ता के आपने इनके साथ जो है वो वादा किया, मिनहुम इनमें से, यानी इनमें से वो लोग जिनके साथ आपने मुआयदा किया, थुम्मा यनखुदून अहदहुम, फिर वो क्या करते हैं कि आपने तो इनके साथ मुआयदा किया लेकिन थुम्मा यनखुदून, फिर वो तोड़ देते हैं अहदहुम अपना अहद, फिर कुल्ले मर्रतिन, हर मौके पर, इतने बुरे हैं कि हर मौके पर अपने अहद को तोड़ देते हैं। वहुम ला यत्तकून, और जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं करते, इन्हें जरा भी डर नहीं लगता। यहाँ पे मदीना के यहूदियों की तरफ इशारा है कि मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपने इनके साथ जो है बाहमी तावुन का एक मुआयदा किया था, और ये क्या करते थे, ये उस मुआयदे को जो थे वो तोड़ते थे। तो यहाँ पे उसी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है कि हर मौके पर ये मुशरिकीन का, काफिरों का साथ देते हैं और मुसलमानों से किए वादे को तोड़ देते हैं, और जरा भी इन्हें अल्लाह से डर नहीं लगता। فَإِمَّتَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِمَّا اگر تَثْقَفَنَّهُمْ, अगर पाओ तुम उन्हें, تَثْقَفَنَّهُمْ आपको बहुत ही मुश्किल लफ्ज लग रहा होगा, वैसे ये भी आसान है, आप जरा गौर से देखें, इसका रूट है सा काफा, इसके मानी है किसी चीज के पा लेने या किसी काम के करने में महारत से काम लेना, तो दानाई से, जैसे सकाफत लफ्ज नहीं होता, सकाफत भी इसी से है, तो सकाफत, दानाई, महारत, इसके मानों में ये लफ्ज पाया जाता है। तो तस का फन्ना हम, जब कभी तुम इनको पाओ तो क्या करो, फिलहर भी जंग में, जब तुम जंग में इन अहद शिकनी करने वालों को पाओ, फशर रिद बेहिम, फिर इन्हें जो है वो ऐसी सजा दो कि दूसरे देखकर भाग जाएं। शीन रा दाल इसका रूट है, और इसके मानी है कि किसी को जो है वो ऐसी सजा देना कि दूसरे लोग जो हैं उस सजा को देखकर जो है वो भाग जाएं, यानी किसी को ऐसी मार मारना कि जिससे इनके पीछे इनके हमायती और साथी जो है ना उनके अंदर भगदड़ मच जाए, और वो जो पीछे वाले हैं वो इस अंदेशे से उस तरफ का रुख भी ना करें कि कहीं इनका भी वही हशर ना हो जो इनके आगे वालों का हुआ है। फशर्रिद बिहिम, तो इनकी ऐसी खबर लो, इनको ऐसी सजा दो कि ये ऐसे भागे فشرد بہ من خلفہم، کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بھاگ جائیں. فَإِمَّا تَسْتَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، کہ جو دوسرے لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ بھی بھاگ کھڑے ہوں. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ انہیں جو ہے وہ کچھ سمجھ آ جائے، شاید کہ یہ جو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں نا یہ کچھ اس سے نصیحت حاصل کر لیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، تخافنہ خوف سے ہے، خاف و فائز کا روٹ ہے، اگر آپ کو خوف ہو من قوم، کسی قوم سے کسی گروہ سے، خیانت وعدہ خلافی کا، فم بز الیہم، فم بز پھر پھینک دو، کیا چیز پھینکو، وعدہ جو ہے نا وہ ختم کر دو، جو آپس میں ایگریمنٹ ہوا ہے نا کہ جنگ نہیں کرنی ہے کسی بھی لحاظ سے، وہ جو معاہدہ ہے نا اس کو ان کی طرف پھینک دو، معاہدہ توڑ دو. کیونکہ فرم دس کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، آپ پہلے بھی اس کو جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ نون با زال، کسی چیز کو حقیر سمجھ کر جو ہے نا اس کو پھینک دینا، چھوڑ دینا، نوازا، کسی چیز کو درخوئے اتنا نہ سمجھتے ہوئے پھینک دینا. تو کیا کریں، فرم دس الیہن، تو پھینک دے ان کی طرف. الا سوا، الا سوا، الا جو ہے آپ کو بتائیے کہ یہ ایک پریپوزیشن ہے، اور جیسے میں سوا ان برابری، مساوی نہیں ہوتا برابر، اسی سے سوا ہے، تو برابری کی حالت میں وہ جو معاہدہ ہے نا اس کی طرف پھینک دو. اس کے معنی یہ ہیں جیسے مثلا کسی قوم کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے لیکن اس قوم سے خطرہ ہے کہ یہ جو وعدہ ہے اس کو پورا نہیں کرے گی، تو کیا کریں کہ باقاعدہ ان کو پہلے سے بتا دیں کہ اب ہمارے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں خطرہ تھا اور تم جو ہے وہ جو ہے وہ اس یہ سوچ کر کے کہیں یہ وعدہ توڑ نہ دے، جو ایگریمنٹ ہے توڑ نہ دے، اور تم جو ہے ان کو بتاؤ بھی نہ اور خود سے ہی کوئی قدم جو ہے وہ اٹھا بیٹھو، تو یہ چیز جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ یہ واقعہ بھی ملتا ہے، یہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ مثلا اگر دشمنوں کے ساتھ بھی کوئی وعدہ ہے تو اس کو کیسے پورا کرنا چاہیے. یہ ابو داؤد ترمذی نسائی کی روایت ہے، سلیم بن عامر کی روایت سے انہوں نے نقل کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک قوم کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، اور وہ کیا تھا کہ جنگ نہیں کرنی نا، جنگ کو روکنے کا معاہدہ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا اسی معاہدے کے دوران کہ اپنا لشکر اور اپنا جنگ کا سامان اس قوم کے قریب پہنچا دیں، تاکہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے. عین اس وقت جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر اس طرف روانہ ہو رہا تھا، تو ایک بوڑھے صحابی تھے گھوڑے پر سوار، بڑے زور سے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر وفاءً لا غدرا، یعنی نعرہ تکبیر کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو معاہدہ پورا کرنا چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قوم سے کوئی صلح یا ترک جنگ کا معاہدہ ہو جائے تو چاہیے کہ ان کے خلاف نہ کوئی گرہ کھولے اور نہ کوئی باندھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر کی گئی، دیکھا تو یہ کہنے والے بزرگ حضرت عمر بن امبسہ تھے، عین نون با سین ہا، یہ صحابی تھے. کیونکہ ابھی چونکہ معاہدہ تھا نا کہ جنگ نہیں کرنی، تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس معاہدے کے دوران اپنی فوجوں کو دشمن کی سرحد کے قریب لے جا رہے تھے، لے جانا چاہ رہے تھے اور سامان جنگ بھی. تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ جب معاہدہ ہے کہ جنگ نہیں کرنی تو یہ جنگ کی جو تیاری ہے اور آپ کی فوج کا اس کی طرف بڑھنا جو ہے یہ بھی وعدے کی خلاف ورزی ہے، خیانت ہو جائے گا، اور آپ یہ کام جو ہے وہ مت کریں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جو فوج تھی اس کو جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ رکنے کا حکم دے دیا. تو یہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا، تو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں پھر واپس بلا لی، وہ جو تیاری تھی اس کو روک دیا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے، कि वादा पूरा करना है, खा वो किसी से दुश्मन से क्यों ना किया वाओ। तो आज की जो आयात है वो मुझे और आपको अमल के क्या उसूल देती हैं। इसमें पहली चीज तो ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है ना वो अल्लाह ताला का है, माल है, दौलत है, कुव्वतें हैं, सलाहियतें हैं। तो पहला जो अमल का हमारे लिए उसूल निकलता है वो ये है कि ये सारा कुछ जो है अल्लाह का है। दूसरी खास खास बात जो हमारे सामने आती है, जो कि बड़ी अहम बात है, और वो ये कि ये दुनिया की जिंदगी जो है ये एक इम्तिहान की जिंदगी है। और इसमें इम्तिहान किस चीज का है? इसमें इम्तिहान जो है वो इस बात का है कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो है उसकी अतात जो है उसको छोड़ दिया जाए, और ये अतात हर मौके पर करनी है। तीसरी चीज जो है ये याद रखनी है कि जो बहुत ही अहम बात है कि शैतान जो है ना वो साथ लगा हुआ है। जैसे गज़वाए बदर में भी शैतान जो था वो साथ साथ था, तो लेकिन शैतान का अंजाम क्या हुआ? तो कामयाबी जब भी आती है अल्लाह की मदद से आती है, और कामयाबी की वजह जो है वो मालो दौलत की कसरत नहीं, बल्कि ईमान के नतीजे में, अमले सवाले के नतीजे में, सबर और करने वालों के साथ जो है वो अल्लाह मौजूद होता है। तो फिर एक और हमें अमल का उसूल ये मिलता है कि हमें अपनी बुनियादों को मजबूत करना चाहिए, हमें अपने ईमान को बढ़ाना चाहिए। और आपने इसमें जो है वो जिहाद के जो 6 उसूल पढ़े, तो ये मैदाने जंग के भी हैं, अपने नफ्स से जो जिहाद है उससे भी, और शैतान जो इबलीस से जिहाद कर रहे हैं, जो बुराइयों के खिलाफ जिहाद करना है, जो बदकारी और बेहयाई के खिलाफ जिहाद करना है। तो ये जो चौमुखी लड़ाई आप लड़ रही हैं, इसके अंदर भी आपको इन्हीं सिफात को जो है वो अपने अंदर जो है वो पैदा करना है। फिर एक और खास बात जिसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये कि लड़ाई नहीं करनी, जंग नहीं करनी, क्योंकि लड़ाई जो है इससे हौसले जो है वो पस्त हो जाते हैं। और कुफर नहीं करना, जुल्म नहीं करना, वादा खिलाफी नहीं करनी, ईमानत में खयानत नहीं करनी। और ये हैं चंद एक उसूल जो हमारे सामने आते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए, हम सबके गुनाहों को माफ करे, हम सबसे राजी हो जाए, और हम सबको अपना बेहतरीन मुसलमान बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैह।